ओम शांति। एक व्यक्ति
आबू रोड से
एक ट्रेन में बैठा, ट्रेन कन्याकुमारी जा रही है, और ट्रेन में बैठने के बाद 15-20 मिनट के बाद रोना चालू करता है। सामने एक महिला बैठी हुई है, वो सोचती है शायद घर वालों से बिछड़ने का दुख होगा, वो कुछ नहीं बोलती और बोलना भी नहीं चाहिए, पर वो रोते ही रहता है। शाम आती है तब भी रो ही रहा है। उस महिला को लगता है पूछना तो नहीं चाहिए, पर पूछूं या नहीं पूछूं, क्या हुआ? ये भी हो सकता है बड़ा गहरा जख्म हो, बिछड़ रहा है अपने परिवार से, या जिसको मिलने जा रहा है कोई बीमार हो। इसलिए कहती है कि नहीं, पूछना तो नहीं चाहिए, अच्छा भी नहीं लगता है, ऐसा बेचारे का दुख बढ़ जाएगा। तो वो सो जाती है। दूसरे दिन जब सुबह उठती है तो देखता है अब भी रो रहा है। अब उसको लगता है पूछूं नहीं पूछूं, पर डरती भी है थोड़ी सी, पता नहीं मेरा पूछना अच्छा होगा नहीं होगा। कुछ नहीं करती है, सारा दिन वो चुप रहती है, परंतु वो रोते ही रहता है। दूसरा दिन ट्रेन में, अब भी रो रहा है। शाम होती है, अब भी रो रहा है। तीसरा दिन, अब भी रो रहा है। अब तो वो महिला कहती है अब मेरे से नहीं होगा, मेरे धैर्य का बांध टूटा जा रहा है। ऐसा कौन सा दुख है जो 3 दिन से लगातार व्यक्ति रो रहा है? हो सकता है कोई मर गया हो, कुछ भी हो, फिर भी ये तो हद कर दी है। तो वो पूछती है तीसरे दिन, अब कन्याकुमारी आने वाला है, आप रो क्यों रहे हो? वो कहता है मैं गलत ट्रेन में बैठ गया, मुझे दिल्ली जाना था, मुझे वास्तव में कहाँ जाना था, दिल्ली जाना था, और बैठने के 15-20 मिनट बाद ये पता चल गया, इसलिए रो रहा हूँ। ट्रेन ही गलत थी, कहीं वो मैं तो नहीं जो गलत ट्रेन में बैठा है। ट्रेन ही गलत है, इसके लिए रोना जारी है। और ट्रेन भले गलत भी हो, जब पता चल गया, किसी भी स्टेशन पर उतर सकता था और दूसरी ट्रेन पकड़ सकता था, पर पता नहीं रोने से ही इतना लगाव है, दुख ही अच्छा लगता है। दुख में भी एक अद्भुत आकर्षण है, पकड़ लेता है, छोड़ने की इच्छा नहीं होती है, बहुत प्रिय लगता है दुख। 10 लोग हमारी तारीफ करते हैं, कोई असर नहीं, एक ने आके निंदा कर दी, बस इसी का इंतजार था। उसने कुछ बोला क्या, और पकड़ लिया उसको और एकदम दिल में बिठा दिया, और रात भर उसका चिंतन चालू है। जिन्होंने अच्छा बोला उसको कुछ नहीं, पर दुख में अद्भुत सा आकर्षण है। जो व्यक्ति दुखी है वास्तव में उन्हें दुखों से बहुत प्रेम है, इसलिए दुखी है। दुखी रहना अच्छा लगता है, और दुखी रहने के फायदे, सहानुभूति, दुखी रहने के फायदे, अटेंशन, पूछेंगे क्या बात है, क्यों दुखी हो, क्या बताऊं, इतने दुख है, केयर, हमदर्दी, आंसू क्यों आते हैं, आंसू के कारण क्या है, क्यों आते हैं, आंसू का संबंध किससे है? हाँ जी, किससे किससे किससे? इच्छा से। आंसू का संबंध किससे है? कोई भी। आंसू क्यों आते हैं? भावना। और आंसू का संबंध ना दुख से है ना सुख से है, आंसू का संबंध अतिरेक से है। अतिरेक, बहुत खुशी बहुत खुशी बहुत खुशी आंसू, बहुत दुख बहुत दुख बहुत दुख आंसू। इसका सुख दुख से संबंध नहीं है। आंसुओं का संबंध अतिरेक से है, अत्याधिक किसी चीज का बढ़ जाना। और दुख भी हो सकता है सुख भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, परंतु हम जिस आंसुओं की आज बात करेंगे वो दुख वाले हैं, खुशी वालों की नहीं। उस रोने की जिसको कहते हैं इमोशनल क्राइंग, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है साइकोलॉजिकल इमोशनल क्राइंग। बाकी क्राइंग बीमारी भी है, कुछ कुछ आंखों की ऐसी बीमारी है जिसमें निरंतर आंसू बहते रहते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी है जब जब खाना खाओगे तो आंसू आएंगे, क्योंकि नर्व्स का कनेक्शन है इधर और इधर। ऐसी भी कुछ बीमारियां है, क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छ के आंसू अंग्रेजी में, वैसे उसका दूसरा अर्थ दूसरा होता है झूठे आंसू। बाकी ये बीमारी अपने आप में बीमारी है, जब भी मरीज खाना खाता है आंसू आते हैं, सच्चे आंसू नहीं होते। वहां से ही वो शब्द निकला क्रोकोडाइल टीयर, मगरमच्छ के आंसू बहाना, झूठे आंसू दिखावे वाले। तो मुरलियों में वाक्य आता है जिन रोया तिन खोया। क्यों हम रोते हैं? रोना यहां पर दुख की निशानी के अर्थ में हम लेंगे। रोने के क्या कारण है? जब कोई दिल अंदर गहरी बैठ जाती है, हिला देती है, तब आंसू आते हैं बहुत गहराई से। कुछ जख्म ऐसे कोई दे देता है कि आंसू आते हैं। भगवान कहता है तुम्हें रोना प्रूफ आंसू प्रूफ बनना है, आंसू आने ही नहीं चाहिए, सूख जाए तुम्हारे आंसू। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, योग की धूप से आंसुओं की टंकी को क्या कर दो, सुखा दो। हमारे यहाँ एक बहन है, वो कहती है हमारी आंसुओं की टंकी इतनी पावरफुल है कि योग की धूप बेअसर है, इतने आंसू है हमारे पास, बहुत आंसू है। और हमारे आंसुओं का रिमोट कंट्रोल हमने दूसरों के हाथ में दे रखा है, वो उधर से दबाता है इधर से आंसू चालू। ले क्यों नहीं लेते? नहीं अच्छा लगता है, उसी के हाथ में रहने दो। इस ब्राह्मण जीवन में आंसू आने के कुछ कारण है दुखी होने के। ब्राह्मण जीवन कहो या मनुष्य जीवन में ही ऐसे सात कारण है। जब व्यक्ति बहुत अंदर से हिल जाता है, और इन्हीं सात परिस्थितियों में हमें अचल अडोल रहना है। और ये सातों बातें हर एक के जीवन में आएगी, सातों की सातों बातें ब्रह्मा के जीवन में आई और बाबा ने सारी बातें पास कर ली। सबसे पहला कारण अपमान। जब कोई अपमान करता है, इंसल्ट करता है, बहुत दुख होता है। और विशेष रूप से सबके सामने अगर अपमानित हो जाए तो ज्यादा दुख होता है, बहुत दुख होता है। जितना कि व्यक्ति एक नया महाभारत खड़ा कर देता है। महाभारत का कारण क्या था? अपमान, सहन नहीं कर सका। महाभारत में एक दृश्य है, दुर्योधन इंद्रप्रस्थ आता है, द्रौपदी हंसती है, उसके बाद का दृश्य धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी के बीच का संवाद। युधिष्ठिर पूछते हैं क्या दुर्योधन यहां आया था? वो कहती है हाँ। क्या तुमने ऐसा कहा अंधे का पुत्र अंधा? वो कहती है हाँ। युधिष्ठिर कहता है दुर्योधन उन लोगों में से नहीं है जो स्वयं पर हुए हुए दुखों को भूल जाए, जो दूसरों ने दिए। वो दूसरों को जितने दुख देता है वो भूलता है, पर उसको यदि किसी ने दुख दिया वो भूलने वालों में से नहीं है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। और इस अर्थ में भी कि वो हमारा अतिथि था इसलिए अपमान नहीं करना चाहिए था। इस अर्थ में भी कि वो हमारे ज्येष्ठ पिता का पुत्र था इसलिए भी अपमान नहीं करना चाहिए था। और तीसरा, ये हमारे ज्येष्ठ पिता का भी अपमान किया अंधे पिता, और वो मेरा भी भाई है, अनुज है, छोटा है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। द्रौपदी कहती है मैं समझती हूँ मैंने गलती कर दी, मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। युधिष्ठिर कहता है ऐसी गलतियों के लिए माफ़ी नहीं होती है, प्रायश्चित होता है, तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा। और इसका परिणाम बहुत घातक होगा और युद्ध हो गया। तो सबसे पहली बात जो सबसे अंदर गहराई से दुख देती है वो है अपमान। पर बाबा ने मुरलियों में कहा है अपमान तब महसूस होता है जब अभिमान हो। जिसमें अहंकार ही नहीं उसको अपमान महसूस नहीं होता है, पर जिसमें मैं जितना अधिक शक्तिशाली है उसको अपमान भी उतना ही ज्यादा लगता है। कोई गरीब आए उसको नीचे बिठा दो कुछ नहीं लगेगा उसको, कोई बड़ा आए उसको बैठा दो तो कभी भूलेगा नहीं कि हमारा अपमान किया था। जितना मैं बड़ा है उतना अपमान बड़ा। इंसल्ट, जब जब इंसल्ट होती है आंसू आ जाते हैं, दुख होता है, और आंसू निशानी जैसे कहा तीर है, इतना अधिक दुख है, इतना अधिक दुख है कि अब उसको कैसे एक्सप्रेस करें। और बहनें ज़्यादा रोती है भाई कम, ऐसा माना जाता है, पर शायद ऐसा नहीं है। भाई भी रोते हैं परंतु आंसू थोड़े कम बहाते हैं, और बहनें आंसू थोड़ा ज़्यादा बहाती है। और बहनों का अस्त्र और शस्त्र भी है आंसू, कुछ बात मनवानी हो तो आंसू इधर से बहे कि बात हो जाती है, ऐसा संसार में मान्यता है। तो ब्रह्मा का कितना अपमान किया परंतु वो रोया नहीं कभी, और यहां पर अपमान होगा। ऐसा कोई तो इस संसार में होगा जिसका हमने कभी अपमान किया था किसी जन्म में, वो तो आएगा ना कभी अचानक आ जाएगा और कुछ ना कुछ कह देगा, सबके सामने कह देगा। एक ब्रह्मा कुमारी बहन गई बाहर सेमिनार लेने के लिए, और लेक्चर चालू होने से पहले उसने सबको कहा टाइम मैनेजमेंट ऐसा कुछ लेक्चर, उसने कहा कि बिफोर मैं इससे पहले कि लेक्चर चालू करूं मैं चाहती हूं कि आप सबका मोबाइल बंद हो, मैं नहीं सुनना चाहूंगी कि किसी का मोबाइल बजना नहीं चाहिए क्लास के दरमियान। जो क्लास चलेगी यहां पे सेमिनार, एक का भी मोबाइल नहीं बजना चाहिए, सब अपना अपना मोबाइल साइलेंट कर दो। फटाफट सबने साइलेंट किया, लेक्चर चालू हुआ, 10 मिनट के बाद उसी का मोबाइल जोर से बजा। एक भाई ने सीधा खड़ा होकर बोल दिया पहले अपना तो देखो, घूट तो पीने पड़ेंगे अचानक कभी कभी। जो हम दूसरों को सिखा रहे हैं वो हमारी धारणाएं बहुत मजबूत चाहिए, नहीं तो ऐसी परिस्थिति आएगी। एक बहन टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कराने जा रही है कहीं, ट्रेन में बैठकर स्टेशन आया, स्टेशन से उतरी और वहां कुछ खरीदने में लग गई, ट्रेन छूट गई। टाइम मैनेजमेंट किस लिए जा रही है? लोगों को क्या सिखाने? टाइम मैनेजमेंट। खुद ही के 12 बजे हुए तो कैसे सिखाएंगे दूसरों को? सिखाने में बड़ा रस है, पर दूसरों को सिखाओ ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। एक भाई था, बाहर की कहानी, लेक्चर दिया नॉन वेज फूड बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, रोग होते हैं उससे, नुकसान कितना होता है, बिल्कुल मांसाहार बंद हो जाना चाहिए, कितनी पीड़ा होती है जानवरों को। बहुत बड़ा लेक्चर दिया, सबने वाह 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 किया। वहां एक स्टूडेंट बैठा था साइंस का, उसको लगा मैं इसका पीछा करता हूँ, ये क्या करता है, मुझे देखना है इसको। लेक्चर तो बहुत अच्छा दिया, नॉनवेज नहीं खाओ ये नहीं खाओ, उसका पीछा करते गया कार से। जिसने लेक्चर दिया था वो लेक्चरर एक रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट में बैठ के उसने कहा नॉनवेज ऑर्डर किया और नॉनवेज आ गया। अभी अभी लेक्चर दिया, किस पर? नॉनवेज खाना ही नहीं चाहिए। वो स्टूडेंट एकदम वहां पहुंच गया और उसने कहा मैं अभी अभी आपके लेक्चर में बैठा था, आपने कहा था नॉनवेज नहीं खाना और आप खुद खा रहे हो। उसने कहा मैंने ये कहा नॉनवेज नहीं खाओ, मैंने ये थोड़ी ना बोला मैं नहीं खाता हूं, मैंने दूसरों के लिए बोला। क्या कहेंगे? तो घूंट तो पीना पड़ेगा कभी कभी। कुर्बानी का मार्ग है, मैं की बकरी बकरी जो है उसको बलि चढ़ाना पड़ेगा, होगा। और यदि कोई हमारा अपमान करता है और हमने उसका किया तो नए हिसाब क्रिएट करेंगे। कुछ नहीं करो, चुप हो जाओ। एक बार ओम शांति भवन में पत्रकार आए और एक पत्रकार ने सभा दी, इतनी ग्लानी की ब्रह्मा कुमारियों की ओम शांति भवन के मंच से, बहुत ग्लानी की, बहुत सारी बातें बताई। वो नीचे उतरा, जगदीश भाई खड़े थे और उससे गले मिले, आहो और गले मिला, बहुत बढ़िया, वाह 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 बहुत बढ़िया। तो इस ब्राह्मण जीवन में यदि कभी अपमान हो जाए, इसका अर्थ ये नहीं है कि बैठ के आंसू बहाओ बाबा के कमरे में, बाबा 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 ये आंसू नहीं रुक रहे, क्या करूं। हम देखते हैं बाबा की कुटिया में ब्रह्मा कुमारी बहने सुबह सुबह आके आंसू, आंखें भीग जाती है। प्यार में भीग जाना अच्छी बात है, पर दुख में भीग जाना ये बाबा को स्वीकार नहीं है। कहाँ गया ड्रामा ज्ञान, कहाँ गया ड्रामा का ज्ञान? सब कुछ अप्लाई करो, स्वयं को परिपक्व बनाना है। लास्ट संडे की मुरली में था ना, कुमारी हो, बहादुर शेरनी हो, रीढ़ बकरी नहीं हो, गाय हो क्या? कोई भी चरा के ले जाए कहीं पर भी, हाँकते हाँकते। अपमान होगा और जब होगा तो ये समझना मुझ में अहंकार अभी भी कितना है, ये मेरे अहंकार का पेपर है। काम का पेपर, क्रोध का, लोभ का, मोह का तो हो गया, ये मेरे अहंकार का पेपर है। इसका मतलब मुझे फील हो रहा है, दुख हो रहा है, मतलब अभी भी बहुत ज्यादा अहंकार है। अब इस पर काम करना है। इसके लिए निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी तीन शब्द है। जबकि निर्विकारी में अहंकार तो आ गया, फिर भी एक तीसरा रखा हुआ है, किस लिए? निराकारी, ठीक है। निर्विकारी में तो काम क्रोध लोभ मोह पांच विकारों से मुक्ति, निर्विकारी में वो आ गया, फिर भी निरंकारी क्यों रखा? उसका अपना महत्व है, क्योंकि इसका भी अहंकार आ जाता है कि मैं निरंकारी हूं। कोई बहुत नम्र है और उसके कानों में कोई जाके बोलते ये जो दूसरा है ना भाई वो तुमसे ज्यादा नम्र है। अच्छा, मेरे से ज्यादा नम्र, नम्रता का अहंकार। जैसे चार लोग मिले, चार विद्यार्थी, पहला विद्यार्थी कहने लगा हमारा जो गुरुकुल है उसमें सभी ज्ञानी लोग हैं, ऐसे ज्ञानी पूरे विश्व में नहीं है जितने हमारे गुरुकुल में। दूसरे कहा ज्ञान से क्या होता है, हमारा जो गुरुकुल है उसमें सभी तपस्या करते हैं, सभी योगी है, ऐसे योगी और कहीं पर भी नहीं है। तीसरे ने कहा ज्ञान तपस्या से क्या होता है, हमारे गुरुकुल में इतनी सेवा करते कि ऐसा कहीं पर भी सेवा नहीं करता कोई। चौथे ने कहा तुम्हारे चाहे कैसे भी हो, ज्ञानी तपस्वी सेवाधारी, हमारे गुरुकुल के जो छात्र है उनमें जितनी नम्रता है वो सबसे अधिक है, हम इस संसार में सबसे अधिक नम्र है। हम इस संसार में सबसे अधिक निरंकारी है। किसी की मजाल जो हमसे ज्यादा निरंकारी हो, हर बात का अहंकार आ जाता है। इसके लिए तीसरा शब्द रखा हुआ है निरंकारी। वो दो होते हुए भी, निर्विकारी होते हुए भी निरंकारी बाबा ने रखा। तो जब कोई अपमान करे और फील हो अंदर, ये समझना बहुत अभी मैं बाकी है, कितना कूट कूट के मैं भरा है, क्या करूं बाबा इसका, कैसे इसको निकालूं, अब आप ही कोई युक्ति बताओ। अहंकार अर्थात रावण बाकी सबको तो मार देगा, बाकी सब लोग, कोई हनुमान मार देगा, कोई जामवंत, कोई सुग्रीव, कोई अंगद, कोई लक्ष्मण, पर अहंकार को मारने के लिए तो राम ही आना पड़ेगा। हे प्रभु तुम प्रवेश करो। जब तक वो नहीं आएगा अहंकार जाएगा ही नहीं, अहंकार हर चीज का रहेगा। हम सेवाधारी है, मधुबन निवासी, हम इतने सालों से ज्ञान में, हम ये करते, हम वो करते, हमने ये सेवा की, हमने वो सेवा की, हर चीज का अहंकार। जैसे सूरज भाई जी एक काल्पनिक कहानी बताते हैं क्लासेस में, एक ब्रह्मा कुमारी बहन बड़ी वरिष्ठ, बाबा के शरीर छोड़ा, बाबा के पास पहुंची, बाबा ने पूछा बच्ची तुमने क्या किया, उसने खुद नहीं कहा, बाबा पूछ रहे वतन में, बच्ची बताओ तुमने क्या क्या किया, उसने चालू किया, बाबा मैंने इतने सेंटर खोले, इतनी सेवाएं की, इतनी कन्याओं को तैयार किया, इतने प्रोग्राम्स किए, फिर विदेश में ये सेवा की, पूरा खुद बता रही है, पर खुद नहीं बता रही, बाबा ने पूछा इसलिए बता रही है, पूरा अपनी जीवन में जो जो किया सब बता रही है, किया फिर वो किया, फिर वो किया, फिर वो किया, फिर वो किया, बाबा ने सब कुछ सुना और लास्ट में एक ऐसा शब्द बोल दिया कि बस। बाबा ने कहा बच्ची ये सब मैं कर रहा था, तुमने क्या किया। संगम युग पर सब कुछ जो हो रहा है वो करा रहा है, हमारी शक्ति से कुछ भी नहीं हो रहा है। हमें तो उसने निमित्त बनाया तो ठीक है, हमारा भाग्य है। जैसे सुदेश बहन जी कहते हैं एक टंकी है ऊपर, नीचे नल है, वो नल हम है, नल कहेगा कि मेरा पानी है मैं लाता हूं, उस टंकी ने इस नल को चुना, उसमें से पानी आ रहा है। महिमा नल की नहीं है, वो चाहे तो किसी और को निमित्त बना दे। आज तुम हो, तुमको हटा के कोई और आ जाए, हम सोचते हैं मैं अगर चले जाऊं या चली जाऊं तो इसका क्या होगा, कौन देखेगा, मेरे डिपार्टमेंट का क्या होगा, अच्छा ही होगा, तुम ही बाधा हो, तुम हट जाओगे तो कोई अच्छा आ जाएगा, तुम्हारी वजह से उन्नति नहीं हो रही है, अच्छा ही है तुम चले जाओ। किस बात का अहंकार कि मेरे मैं चले जाऊंगा तो क्या होगा। मोहम्मद रफी ने बहुत अच्छी बात कही है, सभी को सीखने जैसी, मोहम्मद रफी जैसी आवाज शायद 5000 वर्ष में किसी और की होगी। उसने कहा है कि खुदा चाहता तो ये आवाज किसी और हलक में डाल सकता था, खुदा अगर चाहता तो किसी और कंठ में ये आवाज डाल सकता था, उसने मुझ में मेरे गले में डाली, मेरी बड़ाई नहीं है उसकी बड़ाई है। देखो कितनी निरहंकारिता है, और हम छोटी छोटी चीजें करते और अहंकार अहंकार से भर जाते हैं, ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मैंने करता, ये हम क्या कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, दादियों ने जो किया उसके कंपैरिजन में हमारा क्या है, कुछ भी नहीं, जीरो। दादी जो गई थी 1974 में विदेश और जब लौटी 4 साल के बाद वही साड़ी थी जो पहन के गई थी, किस हालत में वो 4 साल बिताए होंगे वहां पर, जो दरवाजा था वही उसी को तोड़ के संदली, और वही दिन में संदली और रात में बेड बनता था। उस तपस्या के सामने हमारी क्या तपस्या है, कुछ भी नहीं। तो किस बात का अहंकार, तो किस बात के आंसू, और आंसू जब आए तो बहुत अच्छा, आने दो, ये बता रहा है लक्षण है, ये बुखार आ रहा है मतलब अंदर कोई बीमारी है, आंसू आए मतलब अब पकड़ो बीमारी को, अंदर मैं की बीमारी बैठी है, अब इस मैं को खत्म करना है, यहां निमित्त भाव लाना है, ये पहला कारण अपमान। दूसरा उससे खतरनाक आरोप, झूठा आरोप कोई लगा दे तो बहुत दुख होता है, बहुत अधिक दुख होता है, एकदम पीड़ा। दरवाजा बंद कर लो और रोते रहो कमरे में, मीरा रोए चुपके चुपके, मेरो दर्द ना जाने कोए, किसी को नहीं बताना है। पता नहीं मेरे ही भाग में ये क्यों आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है बाबा। आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गीत है ना कोई, इतने आंसू इतने आंसू। ये भूलना नहीं है, सत्य स्वयं सिद्ध है। यदि हम सत्य हैं तो भय की आवश्यकता नहीं। और असत्य में बड़े दोष है। पहला दोष है असत्य का कि असत्य जो बोलता है उसे एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। दूसरा अलग अलग लोगों से अलग अलग बोलना पड़ता है, डिफरेंट स्टोरीज, एक स्टोरी नहीं बोल सकता वो। तीसरा झूठ बोलने वाले को याद बहुत रखता है कि उसको क्या बोला था, क्योंकि वही याद रखना है। सत्य बोलने वाले को एक ही सत्य है, वो हमेशा उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं। झूठ बोलने वाले उसको वो बोला था, वो बोलूंगा, वो बोलूंगा, बहुत याद रखना पड़ता है। चौथा असत्य में बेचैनी है। पांचवा असत्य में भय है कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए मेरी बात, पता चल गई तो क्या होगा। और असत्य बोलने का सबसे बड़ा दोष है असत्य संस्कार बन जाता है। एक बार झूठ बोलो, बार बार बोलने की आदत पड़ जाती है, फिर बोलना ही पड़ता है, जबरदस्ती बोलता है व्यक्ति। असत्य में बड़े दोष है। इसके लिए आरोप जब भी लगता है और यदि हम सत्य है तो भय की आवश्यकता नहीं है, जो होगा वो होगा। हम सत्य है, बाबा के सामने हमारा दिल साफ है, फिर यज्ञ का कोई भी कुछ भी आरोप लगा रहा है, हमें डर नहीं है उसका। और सबसे बड़ा आरोप और सबसे ज्यादा दुख जिससे होता है वो कौन सा है? चरित्र। कोई ये कह दे इसका किसी के साथ, उसके साथ इसका चक्कर चल रहा है, बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा आघात होता है। तुम वो भाई के साथ क्या कर रही थी इतना देर? आरोप पीड़ा होती है बहुत, पर ये घुट भी पीना पड़ेगा। ब्रह्मा को छोड़ा के लोगों ने, इतना चरित्रवान व्यक्ति, भगवान की प्रवेशता क्या हो गई, धज्जियां उड़ा ली लोगों ने किरदार की। जो आ रहा है वो कुछ ना कुछ बोल रहा है, पीड़ा होती है बहुत। परंतु सत्य यदि है तो डरने की आवश्यकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो, जिसको जो बोलना है बोलने दो, किस किस का मुंह बंद करेंगे। सूरज को कितनी भी गालियां दे लोगों को, सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कीचड़ कितना भी फेंकते रहे उसके ऊपर, उसको कुछ नहीं होगा। सत्य सूर्य की तरह है, असत्य के काले बादल ढक नहीं सकते उसको। इसलिए रोने की क्या आवश्यकता, और रोने में कितनी चीजें खोनी है। रोना अर्थात पति परमेश्वर परमात्मा को खोना, सबसे बड़ी बात तो। रोना अर्थात स्वमान को खोना, आत्मविश्वास को खोना, सुख शांति को खोना, समय को खोना। रोने में बड़ा टाइम वेस्ट है। और रोना एक बार चालू करे तो बहुत रोने की इच्छा होती है, रोते रहो रोते रहो रोते रहो। और रोने की भी आदत है, जरा जरा सी बात पर रोना बहुत अच्छा लगता है। रो तो हल्कापन लगता है, रो दिया तो क्या होता है, हल्कापन। पर संस्कार भी तो बन रहा है, एडिक्शन भी तो बन रहा है, उसका क्या। आरोप जिसको जो लगाना है लगाने दो, हम सत्य हैं तो भय नहीं। तीसरा असहयोग, जिसको हमने बहुत सहयोग दिया, जब वो बीमार था कितनी उसकी सेवा की, टिफिन पहुंचाया। कोई भाई बीमार था, सेंटर से टिफिन गया उसके लिए एक मास, और आज ठीक हो गया, और कुछ सेवा की आवश्यकता है? असहयोग। माँ के हृदय को जो पीड़ा होती है वो पीड़ा होती है बहन को, ये मातृत्व जो ब्रह्मा को जो पीड़ा हुई वो पीड़ा होती है यहां पर। असहयोग, इसके लिए पहली क्लास में बताया था, मांगना नहीं है सहयोग, मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना करे तो ठीक है उसकी तकदीर। और किसकी बुद्धि कब फिर जाए क्या पता, कब किसको ग्रहचारी लग जाए। अब तक सहयोगी था, 10 साल से अचानक सहयोग करना बंद कर दिया, सेंटर आना ही बंद कर दिया बिना बताए। एक होता है बता के कि आज से मैं नहीं आऊंगा, या मुझे यह ठीक नहीं लग रहा है यहां पर, एक है बिना बताए गायब। बहुत पीड़ा होती है, कोई अनन्य चला जाए तो कितनी पीड़ा होती है, बिना बताए। बता दो क्या हुआ, कुछ भी नहीं बताएगा, चुपचाप चला गया। और मार्केट में मिलता भी है, बोलता कुछ नहीं, पर असहयोग मिलेगा। सबसे सहयोग की अपेक्षा करनी नहीं है, कभी कभी ऊपर से साथियों से और नीचे से तीनों से असहयोग मिलेगा। बाबा सहयोग का सागर है, ये भूलना नहीं, बाबा मदद का सागर है, बाबा हर प्रश्न के उत्तर का सागर है, ये भी उसकी महिमा है। किससे प्रश्न पूछे, किसी के पास हमारे सवालों के जवाब नहीं है, वही वो उत्तर देगा कि मेरे साथ जो हो रहा है ऐसा क्यों, कौन से हिसाब है ये। तो असहयोग मिलेगा, उसका उत्तर ये नहीं है कि रोते बैठो। द मैन नेवर क्राइज, इंग्लिश में कहावत है, द मैन नेवर क्राइज। द मैन अर्थात पुरुष या स्त्री नहीं, द मैन जो दृढ़ संकल्प वाला है वो कभी भी नहीं रोएगा, दुख के आंसू नहीं बहाएगा और टाइम वेस्ट करेगा। उसके बाद है अविश्वास, हमारे अपने हम पर अविश्वास करे, हमारे बड़े हम पर अविश्वास करे, छोटे अविश्वास करे, बहुत पीड़ा होती है। एक सेवा केंद्र का भाई सुना रहा था, कभी 15-20 साल से सेवा केंद्र पर रहता है, एक बार लौकिक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, घर जाना पड़ा, तो वहां के निमित्त आत्मा ने कहा कि तुम जा तो रहे, आने की कुछ गारंटी है क्या। उसको बहुत पीड़ा हुई, तुम जा रहे हो आओगे ना, जबकि दिन रात सेवा में लगा दिए 20 साल, और एक दिन के लिए एक बार जाने की बात आई तो इतना अविश्वास जताया गया, बहुत बहुत दिल फाड़ फाड़ के रो रहा था, इतनी पीड़ा हुई। किसको बताए, आघात हो गया, इधर खंजर भोग दिया किसी ने, खून बह रहा है, बाबा कुछ तो करो, ये बहा जा रहा है, मर जाऊंगा ये ऐसे ही बहते रहा तो। इतनी पीड़ा हुई अंदर, बहुत ज्यादा पीड़ा, बहुत अविश्वास। अगला विरोध, विरोध हमारे ही विरोध में खड़े हो गए सारे, एक सेंटर की बहन उसके विरोध में सारे सेंटर निवासी खड़े हो गए, क्या करेगी, सभी विरोध में खड़े हो गए, किसने भड़काया, कैसे आग लगी पता ही नहीं, अचानक विरोधी हो गए सब, हमको ये नहीं चाहिए, इसको हटाओ, दूसरा लाओ, दूसरी को लाओ। विरोध का भी सामना करना पड़ेगा जैसे ब्रह्मा ने सामना किया। उसके बाद छठवां, निंदा। निंदा, लोग हंसेंगे, निंदा करेंगे, ये भी सहन करना पड़ेगा कभी कभी। जब भी कुछ नया किया जाएगा निंदा होती है उसकी। बहुत बुरा लगता है निंदा जब होती है तो, जैसे स्तुति होने के बाद कितनी खुशी होती है, अंदर लड्डू फूटते हैं, इतनी स्तुति, इतनी तारीफ, आ हा। पर निंदा का एक बड़ा अच्छा गुण है, निंदा अंतर्मुखी बना देता है, स्तुति व्यक्ति को बाह्य मुखी बना देती है। कोई हमारी स्तुति कर रहा है, आ हा। कोई आके कहे कि तुम्हारे बारे में उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, अच्छा और क्या कहा, और भी तो होगा ना कुछ कहा, इतना ही कह के छोड़ दिया बस। कोई आके करे, अरे तुम्हारा ज्ञानामृत मैगजीन में फोटो आया, कहाँ है? वो मैगजीन में 15 फोटो है, उसमें मेरा कहाँ है? हाँ ये है मेरा, बाकी से तो कोई लेना देना ही नहीं है, ये फोटो में तुम्हारा बहुत अच्छा है। जब भी कोई ग्रुप फोटो देखा जाता है, सबसे पहली नजर किस पर जाती है? बाजू वाले पर? कभी नहीं। किस पे जाती है? मैं कैसे दिख रहा हूं। कैसी मनोविज्ञान है ये सूक्ष्म। सबसे ज्यादा ध्यान अपने पर ही जाता है कि मैं देखो कितना अच्छा दिख रहा हूं, ये 10 साल पहले पुरानी फोटो, मैं कहां हूं, ये हूं, अच्छा ये मैं हूं। जैसे खुशी होती है, तारीफ होती है तो बहुत खुशी होती है, जितनी ज्यादा खुशी तारीफ में होगी उतनी ही ज्यादा, उतना ज्यादा दुख निंदा में होगा। फिर एक अमेरिका का प्रेसिडेंट भाषण देने खड़ा हुआ, उसका सेक्रेटरी सामने था और उस सेक्रेटरी ने कहा, इतने सारे लोग तुमको सुनने के लिए आए, अंदर तो तुमको बड़ी खुशी हो रही होगी। प्रेसिडेंट कहता है उससे, यदि कल इसी मंच पर मुझे मौत की सजा दी जाए तो जितनी पब्लिक है ना उससे 10 गुना पब्लिक यहां होगी और खुश होंगे सब, मर रहा है। इसके लिए ना तो मुझे इनके आने से और इनके जाने से कोई खुशी है। स्थित प्रज्ञ योगी, उसकी खुशी किसी और पर निर्भर नहीं है। किसी ने अच्छा कहा तो खुश, बुरा कहा तो दुखी, तारीफ की तो बहुत अच्छा, और कुछ कह दिया, कोई कह दे तुम्हारा हंसना ठीक नहीं है, तुम ये हंसी मजाक ज्यादा करते हो, एकदम दुख। तुमको बोलना नहीं आता है ठीक से, कहां से सीखा भोजन बनाना? ऐसा ही घर से सीख के आई क्या? लौकिक से? तुम्हारे मां ने तुमको यही सिखाया क्या? चोट लगती है सीधा यहां। एक माता को किसी ने मधुबन में बहुत सेवा की 2 मास, जाते समय किसी भाई ने बोल दिया, अच्छा माता खाया पिया मौज किया और चल दी? दुखी हो गई बेचारी, रोने लगी, इतनी दुखी हो गई। हमने कहा, तुम किसकी सेवा में आई थी? उसकी सेवा में आई थी क्या? तुमको कौन सर्टिफिकेट देगा, कोई व्यक्ति या भगवान? एक बेचारा नया नया कुमार आ गया मधुबन, टोली बट रही थी, लाइन में लग गया, उसको क्या पता, वहां पहुंचा, अरे तू मधुबन निवासी नहीं हो, हटो। दुखी हो गया, बहुत ही दुखी हो गया, छोड़कर ही चले गया, सेवा ही छोड़कर चले गए। निंदा होगी, निंदा के लिए भी तैयार रहना है। दादी जानकी का एक क्लास है जिसमें दादी ने कहा, ब्राह्मणों में एक शक्ति की बहुत कमी है, निंदा सहन करने की। चुपचाप निंदा सहन करना बहुत 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 बड़ा पुरुषार्थ है। और लास्ट 7वां, धोखा, डिसेप्शन। कोई हमारा अपना हमें धोखा देकर चला जाता है, क्या कहेंगे? एक तो स्थूल कोई धोखा देता है तो ही कितनी पीड़ा होती है। कोई हमारे पैसे लेके चला जाए, पैसे दिए किसी को और दिए ही नहीं वापस संसार में, और यहां तो सूक्ष्म जो बंधन है आत्माओं में, धोखा दे दे हमें, बहुत 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 पीड़ा होती है। अंतर मन के गहरे जख्म है ये सारे, सातों के सातों बहुत दुख देने वाले। परंतु ये सब होंगे, इन सातों को पेपर समझना है, परीक्षाएं आजमाइशें समझना है और इनसे पार कर कर ही निकलना है। दुखी होना, रोना, रूठना, रूसना, नाराज होना, फीलिंग देवी बन जाना, रोते रहना, इंग्लिश में साइकोलॉजी में कहते हैं HSP, हाईली सेंसिटिव पर्सन, बात बात पे नाराज। एक सेंटर पे हम गए थे, वहां के इंचार्ज बहन जी कह रही थी हमारी छोटी बहनों को थोड़ा समझाओ, कुछ भी बोला तो कहती हम जा रही है अपने घर, बात बात में धमकी देती है, कुछ बोल ही नहीं सकते उनको, कुछ बोल दिया 3 दिन बात नहीं करेगी, फिर मुंह टेढ़ा, वो इधर से हम इधर से। ये जीवन तो तपने का जीवन है, यहां तो ये सब सहन करना पड़ेगा, सब सहन करना पड़ेगा। अगर छोटी छोटी बातों से मुरझा गए, उदास हो गए, नाराज हो गए, रूठ गए, कैसे आगे बढ़ेंगे। हमको किसी ने एक चित्र भेजा था व्हाट्सएप पर, 2 हिरन, पहला हिरन जवान है, 1 तीर लगा घायल होके नीचे गिर गया, दूसरा वही हिरन अब बूढ़ा हो गया है, तीर ही तीर लगे हुए और खड़ा है, मैच्योरिटी, स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। घाव से लथपथ शरीर है परंतु खड़े हैं। और नेकी की राह पर चलने वालों के दुश्मनों की कमी नहीं है संसार में। एक चित्र है, एक व्यक्ति नीचे लटक रहा है, एक हाथ कोई उसको ऊपर उठा रहा है, एक नीचे गिर रहा है और ऊपर लिखा था समाज की उन्नति अगर चाहते हो तो टांग खींचना छोड़कर हाथ खींचना चालू करो। अब तो ये सारे जख्म होंगे, ये सारी बातें होगी, पर हम क्या, रोना ही एकमात्र मार्ग है। हाँ, रोना एक कैथारसिस है, कैथारसिस अर्थात खाली करना स्वयं को, ठीक है खाली कर दिया, पर वो बार 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 रोना उसको क्या कहेंगे। और खाली भी कर दिया, किसके सामने खाली कर दिया, जिसके सामने खाली किया कभी कभी वही दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि उसको हमारी अपनी बात पता चल गई, अब वही फायदा उठा सकता है। बाबा कहता है सब कुछ मुझे सुना दो, भगवान से सब बातें शेयर करनी, उससे जब जब देहधारियों से शेयर करोगे उससे शेयर करना अपने आप कम हो जाएगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी व्यक्ति को फोन कर अपना सारा दुखड़ा सुनाओ, मेरे साथ ये हुआ, मेरा वो हुआ, फिर वो उधर से कहेगा अच्छा अच्छा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्या चाहिए बोलो, तुमको मोबाइल चाहिए तो अभी भेजता हूं, कुछ और चाहिए तो बोलो, पैसे चाहिए क्या चाहिए, नहीं 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 वो सुनाना चालू है, सुनाना चालू है फोन पे दुखड़ा। फिर योग में भगवान को क्या सुनाएंगे, आधा तो इधर ही सुना दिया, अपने आप कम होते जाएगा, क्योंकि भगवान तो बोलता ही नहीं, ये तो बोलता है मास्टर भगवान। देहधारियों से शेयर करना डेंजरस है, कई बार धोखा दे देते हैं, क्योंकि दुश्मन और दोस्त समय के साथ बदलते जाते हैं। आज जो दुश्मन है वो कल दोस्त, और जो आज दोस्त है वो कल दुश्मन। जिसको अपना समझकर अपने दिल की सारी बातें बता दी, आज हमारे ही विरोध में खड़ा है शत्रुओं के साथ। और ब्राह्मणों में बड़ी सूक्ष्म लड़ाई है, ना तो कोई हथियार कुछ नहीं है, बस मौन युद्ध है, दो आत्माएं आपस में बैठी बाजू में, पर युद्ध तो अंदर चालू है, द्वंद महाभयंकर, दो डिपार्टमेंट्स, दो आत्माएं, दो सेंटर, सूक्ष्म युद्ध। इन सब से बाहर निकलना है, भगवान को यह सब पसंद नहीं है। तो रोना अर्थात खोना, रोना अर्थात विस्मृति, रोना अर्थात पाप। इस ब्राह्मण जीवन में रोना नॉट अलाउड। अगर आंसू ही बहाने हैं तो उसके प्यार में आंसू बहाना, बस। एक प्रेमाश्रु के अतिरिक्त कोई भी आंसू नॉट अलाउड, क्योंकि आंसू बहा रहे मतलब दुख है, आसक्ति है, लगाव है, मोह है, अपेक्षा है, एक्सपेक्टेशन है जो फुलफिल नहीं हो रही है, इसलिए आंसू आ रहे। बहुत हमने सोचा है, किसी का कोई कन्या आई उसके ऊपर इतना सोचा कि इसको बहुत बढ़िया बन जाए, सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा कुमारी बन जाए, जैसे हम उसके गुरु है, बहुत अच्छी शुभकामनाएं उसमें दिव्य गुण दिखाई दे रहे हैं, पर अचानक उसका किसी से प्यार, पीड़ा इधर कि वो छूट जाए, इतना ऊंचा इसका मर्तबा है सतयुग का, इतनी अच्छी स्पीकर है, इतने गुण है, इतनी एंकरिंग है, और ये कहाँ फंस रही है किसके प्यार में, क्या कर सकते हैं? रोकेंगे उसको? रोकेंगे तो प्यार और बढ़ेगा। समझाएंगे तो अहंकार जागेगा, क्या कर सकते हैं? सब हमारी इच्छा से नहीं होगा, यहां आत्माएं वही करेगी जो उनको करना है। हम अभी अभी एक सेंटर पर गए थे, वहां पे एक माता हमको मिली, 70 वर्ष से भी ज्यादा, 5 साल से ज्ञान में है, मम्मा की स्टूडेंट है, वो ज्ञान में है, 5 साल से स्टूडेंट है मम्मा की, हाथ छोड़ दिया, अब अपने युगल के साथ ज्ञान में 5 साल से, क्या कहेंगे उससे? तो हम ठीक है जिन्होंने मम्मा को देखा ही नहीं, देखकर साथ निभा के साथ छोड़ दिया, कितने साल संसार में रही और अब जागरण हुआ, अब ज्ञान में आ गई, क्या कहेंगे? तो इस संसार में सब कुछ हमारी इच्छा से नहीं होगा, जो हो रहा है बाबा कहते साक्षी होकर देखो, ये ड्रामा है, ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है, सब एक्यूरेट है इसमें, जब मैं दूसरों को कंट्रोल करने की इच्छा से मुक्त हो जाता हूं तब मेरी मुक्ति का आरंभ होता है। जब मैं दूसरों को कंट्रोल करना बंद कर देता हूं, द रियल फ्रीडम बिगिंस, सच्ची स्वतंत्रता तब चालू होती है मेरी। जब तक मैं किसी व्यक्ति को कंट्रोल कर रहा हूं, तुम ये नहीं करो, तुम वो नहीं करो, तुमने ये क्यों किया, मुझसे पूछ के करो, कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, जब तक मैं किसी और को कंट्रोल कर रहा हूं मैं बंधन में हूं खुद। जब यह इच्छा भी छूट जाएगी तब मेरी मुक्ति वास्तव में चालू होगी। कैसे सूक्ष्म बंधन हमने इसी परिवार में निर्माण कर रखे हैं, वो सारे बंधन छूट गए, गुरुओं के बंधन छूटे, भक्ति के बंधन छूट गए, माँ बाप के बंधन छूट गए, लौकिकता के बंधन छूट गए, काम विकार छूट गया, परंतु अधिकतर ब्राह्मण आत्माएं काम विकार से तो मुक्त है पर बाकी चारों और दूसरे विकार कूट कूट के भरे हैं। बस एक चीज अच्छी है, काम विकार नहीं है, पर बाकी तो इतने अधिक है, अहंकार तो ऐसा कि उसमें हाथ रख दो तो बस कुंडली मार कर बैठे डिपार्टमेंट पर, हाथ नहीं लगा सकते उसको, है सभी पवित्र, देह का किसी को आकर्षण नहीं है, प्यूरिटी से बहुत पावरफुल है, पर बाकी सारी चीजें तो ऐसी कूट कूट के भरी है, इसलिए मार्ग दुर्गम दुरु है, दुर्गम चोटी है, मंजिल भारी है, बहुत पुरुषार्थ चाहिए, इसलिए ऐसी भट्टियां बीच बीच में होती रहे, आपस में सभी बहनें कम से कम एक मास में एक बार मिले, ज्ञान की चर्चा हो, योग के प्रयोग हो जैसे सुबह किया था, और वैसे ही प्रयोग अपने स्टूडेंट्स को वहां जाके सिखाने हैं, ताकि मुरली सुनाने में भी नवीनता हो। ज्ञान की भट्टी करनी है, योग की भट्टियां बहुत की, ज्ञान की भट्टी, धारणा की भट्टी, सेवाओं की भट्टियां बहुत चल रही है, परंतु कौन सी बाकी है? ज्ञान की। तो ज्ञान डिस्कशन, ज्ञान की लेन देन, ज्ञान की चर्चा, नवीनता लानी है ताकि वो स्टूडेंट भी जागरण में रहे। तो ऐसी कुछ बातें थी रोने के बारे में। तो रोना स्टॉप करना है, और काम रोना परिणाम है, रोने पर काम नहीं करना है। कुछ चीज़ जो अंदर हो रही है उसका परिणाम रोना है, रोने को रोकना नहीं है। रोकना किसको है? समझ को। अंदर जो डिस्टर्बेंस चल रहा है उसको यदि रोक दिया जाए तो आंसू अपने आप रुक जाएंगे। रोना तो अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है, केवल जो अंदर हो रहा है उसका। केवल रोने को छिपाने से, रोकने से कुछ नहीं होगा, उससे तो और दमन होगा और बढ़ेगी चीज़ें। इनको समझ लेना है अंदर से, ये जो हो रहा है खेल चल रहा है यहाँ पर, होने दो ये खेल। लास्ट एक बात सुना रहे फिर क्लास को पूरा करते। एक सन्यासी था, युवा सन्यासी, तेजस्वी सन्यासी, किसी गांव में रहता था। सारे गांव वाले उसके पास आते थे, उसका प्रवचन सुनते थे, उसकी वाणी में एक मिठास थी, सबको बहुत प्रिय था वो, सब लोग उसका मान करते थे, सम्मान करते थे। एक दिन गांव की एक कन्या गर्भवती हो जाती, अविवाहित कन्या। उसका बाप उससे पूछता है, ये बच्चा ये क्या है? वो गर्भवती होती है उसको बच्चा हो जाता है। वो पूछता है, ये क्या है, ये किसका बच्चा है? वो इतनी डर जाती है, वो कहती है, वो जो सन्यासी है उसका। सारे गांव वाले एक हो जाते हैं, लाठी लेकर जाते हैं, इससे पहले कि वो सन्यासी कुछ पूछता उसको पकड़ के पहले बाहर फेंकते, उसकी सारी ग्रंथ किताबें सब बाहर फेंक देते और झोपड़ी को आग लगा देते। वो पूछता रहता है, क्या हुआ? कोई बताने को तैयार नहीं। और लास्ट में उसके पिताजी उस बच्चे को फेंकते हैं, कन्या के पिताजी, और कहते हैं, ये बच्चा तुम्हारा है? वो बच्चा रो रहा है। वो सन्यासी कहता है, आप कहते होंगे तो होगा, इज इट सो? वो कहता है, इज इट सो, क्या ऐसा है? वो कहता है, ये बच्चा तुम्हारा है, पूछता नहीं, ये तुम्हारा है, ऐसा कहता है। वो कहता है, इज इट सो? होगा, क्योंकि बच्चा रोए जा रहा है, उसको शांत तो करो। और कोई सुनने को तैयार नहीं, और सब लोग चले जाते हैं तोड़ ताड़ के। अब बेचारा सन्यासी अकेला, संत हृदय नवनीत समाना, कोमल हृदय है, रहम से भरा हुआ है, वो उस बच्चे को लेता है, शांत करने की कोशिश करता है, बच्चा शांत होता ही नहीं, उसको दूध चाहिए। तो सन्यासी दोपहर में उस बच्चे को लेकर भिक्षा मांगने निकलता है, कैसा दृश्य है! सन्यासी छोटे बच्चे को लेकर भिक्षा मांगने, जिस घर के द्वार पर जाता है दरवाजा बंद, भिक्षाम देही, और फिर पहुंचता है उसी घर के पास जिसमें वो कन्या थी, और वहां पर भिक्षा मांगता है, और बच्चा रो रहा है। वो कन्या देखती है, तो मेरा बच्चा है, और वो रो रहा है, उसको इतनी आत्मग्लानी होती है, और वो जाकर अपने पिताजी से कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो सन्यासी निर्दोष है, इसका बाप तो कोई और है, और उसका नाम बताती है। तो उसके पिताजी को बहुत आत्मग्लानी होती है कि सब गांव वाले फिर से एकत्र हो जाते हैं, और फिर उससे कहते हैं, सन्यासी के पास जाते हैं और कहते हैं, ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। वो कहता है, इज इट सो? नहीं है तो ठीक है, किसी और का होगा, चाहे मेरा हो या किसी और का हो, पर इसको भूख लगी है, ये रो रहा है, कोई क्रोध नहीं, जिद सिद्ध नहीं, आरोप भयंकर, परंतु शांत है। सत्य के सूर्य को असत्य के बादल छिपा नहीं सकते। सत्य पर मेरा कितना विश्वास है, उस पर काम करना है। तो ये सातों ही प्रकार की चीजें होगी। सबसे पहला बताया, अपमान, अपनों से अपमान। दूसरा आरोप। तीसरा असहयोग। चौथा अविश्वास। पांचवा विरोध। छठवा निंदा। और सातवा धोखा। सप्तबान है, सप्त तीर हृदय को छेद देते हैं, आंसू बहते हैं, खून बहता है, पर ये साहब कुछ भी हो, भगवान ने सब कुछ कहा, ये सब कुछ होगा, अचल अडोल रहना है, स्थिर रहना है, साक्षी होकर देखना है, हिसाब किताब चुक तो हो रहे हैं, और जो आत्मा हमारे साथ ये कर रही है, अच्छा है वो कर रही है, हिसाब किताब फटाफट चुक तो हो रहे हैं। लास्ट संडे की मुरली इसी पर थी, हिसाब किताब फटाफट फटाफट चुक तो हो गए, इतने लोग मर गए भोपाल में, अच्छा है, मशीनरी है ये तीव्र हो गई, लंबे समय के पाप एक धक से चुक तो हो गए। और एक लास्ट बात, गुजरात में एक कन्या थी, बहुत अनन्य कन्या, इतनी सेवा करती थी, इतने दिव्य गुणों से भरपूर सेवा केंद्र पर आती थी, अभी ब्रह्मा कुमारी बनने ही वाली थी जैसे, और बहुत ही अच्छी कन्या, सबको बहुत प्रिय थी, सब बहुत चाहते थे। एक दिन अचानक जा रही थी रेलवे स्टेशन, स्टेशन क्रॉस कर रही थी, उधर से कुछ एक्सीडेंट हो गया और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अव्यक्त वहाँ की जो बहन थी, बहुत पुरानी बातें हैं, जब संदेश आते थे बहनों के द्वारा, वो बहन ने बाबा से संदेश मनाया, बाबा इस बच्ची का क्या दोष था, उसमें कुछ भी पाप तो था ही नहीं, लेश मात्र पाप नहीं था, उसने कोई पाप किया ही नहीं था उसके जीवन में, 18 साल की यह कन्या क्यों ऐसा हो गया उसके साथ। तो बाबा ने उत्तर दिया था, बच्ची को बाप से इतना प्यार है कि उसके जो भी विकर्म थे अब तक के, वो एक धक से बस उसी से भस्म हो गए, अब इसका अगला जो जन्म होगा वो बहुत अच्छा होगा, ये भगवान का उत्तर था। इसलिए हमें पता नहीं हमारे साथ जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, जन्म जन्म के हिसाब है, अचानक कोई सामने आ जाता है, अचानक कोई झगड़ा करता है, अचानक पुलिस केस, अचानक लीगल केस। एक बहन ने सेंटर के लिए जमीन ली, जिस भाई से जमीन दी उसने दिया कि ये सब मेरी जमीन है, आप ले लो यहाँ सेंटर बनो, सेंटर बनने के बाद पता चला वो जमीन वो भाई की थी ही नहीं, किसी और की थी, अभी केस चालू है। धोखा किसने, अपने ही भाई बहनों के द्वारा, क्या करें, कोर्ट के चक्कर लग रहे हैं, कोर्ट केस चालू है कितने सालों से, ये सब होगा हिसाब किताब। इसलिए इसका उत्तर ये आंसू नहीं है, आंसुओं को रोक दो। अच्छा, ओम शांति।